الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. خداوند کریم، خداوند منان، احسن الخالقین، وہ اپنے مخلوقات میں سے انسان نامی مخلوق کو احسن تقویم، بہترین پروگرام کے ساتھ خلق ہونے والی مخلوق قرار دے رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقویم ٹائم ٹیبل کو بھی کہتے ہیں، پروگرام کو بھی کہتے ہیں اور اسباب کو بھی کہتے ہیں، کہ اگر ہم نے انسان کو خلق کیا تو وہ اسباب بھی پیدا کیے کہ جو اسے اچھے کاموں کی طرف لے جائے یا کمال پر پہنچنے کے لیے. اللہ کی جو صفت ہے جبروت، یعنی ناقص کو کمال عطا کرنے والا. اگر کوئی ناقص ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے، بلکہ اس نے اس ناقص کو کمال حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب مہیا کیے ہیں، کہ اگر انسان ان اسباب کا استعمال کرے گا تو وہ کمال کی منزلوں پہ پہنچ جائے گا. اور ان اسباب میں سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے عقل، کہ انسان اگر عقل کا استعمال کرتا رہے تو کمال پر پہنچنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کنفیوژن کا اور انسان کا مس انڈرسٹینڈنگ کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرضیات بھی بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں علوم میں، مثال میں مناقشہ بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں کل کے ایک واقعے کے متعلق عرض کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اگر ہمیں ان کی سند چاہیے تو بنی اسرائیل بننا پڑے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی عبرت، کسی اس کے آس پاس کے واقعے کو لے کر حضرت موسیٰ سے متعلق واقعات بیان کی جا سکتے. بعض اوقات لوگ تدبر کرتے ہیں کہ اس واقعے میں تو حضرت موسیٰ کی رسوائی ہو رہی. ہم کسی نبی کو رسوا نہیں کر سکتے، لیکن خدا اپنے نبی سے اس طریقے کے سوالات کر سکتا ہے، کیونکہ خدا اور نبی کا مسئلہ ہے क्योंकि वो किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए सवालत कर सकता है। बहुत से लोग दुआए कुमैल इसलिए नहीं पढ़ते कि मौला अली तो गुनाह ही नहीं करते, तो वो कहेंगे कैसे कि खुदाया मेरे गुनाह माफ कर दे। तो ये सीधी सी बात है कि जिस तरह अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, तो इसके माने थोड़ी खुदा का भी एक खुदा है, नहीं, ये बंदे की जबान में नाजिल की जाता है। दुआए कुमैल, अच्छा हुआ मौला ने उसका नाम दुआए कुमैल हम जानते हैं, वरना कहते हैं अरे मौला अली के बारे में ऐसी बातें। नहीं, मौला से तो जब पूछा जाता है कि मौला मैं किस तरह से अपनी बख्शिश करवाऊँ, तो मौला ने फरमाया कि कुमैल अल्लाह से बात करने का एक तरीका है। देखिए, जब हम बात करते हैं, अपना केस लेके जाते हैं अदालत में, तो हम एक अटर्नी करते हैं, बात हमारी होती है लेकिन अटर्नी पैसे लेता है बीच में काम करने के। क्यों? क्योंकि अटर्नी वो है कि जो हमारी बात को भी समझता है, फिर उसको कानूनी बात बनाता है, फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। तो अगर हम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम से कोई सहारा लेते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ अटर्नी है, उनको मालूम है कि किसी बात को बयान करने के लिए शान खुदावंद मन्नान का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन जो वाकयात होते हैं, वाकयात में कभी कभी ऐसा होता है कि अरे मौलाना वो कैसे मुमकिन है ऐसा हो जाए वैसा हो जाता है, कि ऐसा वैसे का मसला नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान है, चलता है, तो हमें अपने कामों में अल्लाह की मदद चाहिए। बाज़ लोग अल्लाह की भी मदद नहीं चाहते, उनको मालूम है कि हम बड़े बहादुर हैं, हम अल्लाह की भी मदद नहीं चाहिए। एक रोज़ एक साहब क़ीमा लेकर आए, बीवी से कहने लगे कबाब बना दो। बेगम ने कहा इंशाल्लाह बन जाएंगे। कहा आ गए हैं तो इंशाल्लाह का क्या चक्कर है, अब तो आप बना ही दो। उन्होंने कहा फिर भी अल्लाह की मदद, अगर अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगे। बोला नहीं नहीं मैं इन बातों को नहीं मानता। बेगम ने कहा अल्लाह समझे आपको, इंशाअल्लाह नहीं कहना। बहरहाल कबाब बन गए, तैयार हो गए, बड़े भूखे थे। जैसे ही लुकमा तोड़ा, किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ना कौन आ गया है गरम गरम कबाब खाने। अब उठ के जैसे गए दरवाजे पे, दरवाज़ा खोलते पुलिस थी बाहर, एकदम गिरेबान पकड़ के बाहर निकाल लिया और पीटते हुए गाड़ी में बिठाया और बड़े घर ले गए। उन्होंने जब बहुत पीट लिया और सांस आया पीटने के बाद, तो कहा सरकार ये तो बता दो क्यों पीट रहे हो। कहा मिलावट करते हो। कहा सरकार कैसी मिलावट, कौन सी मिलावट। कहा तुम आटे में मिलावट नहीं करते। कहा सरकार वो तो मेरे पड़ोसी की दुकान है, मेरी थोड़ी है। तो कहा अच्छा अब हमें झूठा बताते हो। बहरहाल तहकीक की गई, रात भर बंद पड़े रहे, पिटते रहे। सुबह जब तहकीक की तो पता चला कि इनकी नहीं है, वो पड़ोसी की थी आटे की दुकान। बहरहाल उनको छोड़ दिया गया। बीवी परेशान के गए कहाँ, दरवाजे पे गए थे, बाद में कोई आवाज़ ही नहीं आई। जब सुबह वापस आए तो दखलबाब किया, बीवी ने कहा कौन। कहा कि इंशाल्लाह बताते हैं। ये कौन आ गया, दरवाजा खोला, कहा आप कहाँ थे। कहा इंशाल्लाह बताते हैं। कहा अंदर तशरीफ लाइए। कहा इंशाल्लाह आते हैं। कहा कुछ खाया। कहा इंशाल्लाह सब कुछ बताते हैं। कहा कुछ खाना है। कहा इंशाल्लाह खाते हैं। तब ये इंशाल्लाह अब कहना पड़ रहा है, अगर पहला कह लिया होता तो कबाब भी मिलते, ये जिल्लत व खारी भी ना मिलती। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। अब मैं तलाश करूँ कि इसकी सनद कहाँ है, क्या है, नहीं। असल मसला ये है कि किसी बात को जब हम हिकायत के तौर पे बयान करते हैं तो मुमकिन है कि वो के हज़ार रास्तों से गुजरती है। कहते हैं कि बात बदलती कैसे। बादशाह ने कहा ये बात बदलती कैसे। कहा सरकार अभी अपने सारे मुलाजमीन को लाइन में खड़ा करो, मैं बताता हूँ कैसे बदलती है। कहा सारे खड़े हो गए लाइन में। कहा कि पहले वाले से कहा बादशाह को बुखार हो गया है। कहा ये बात आप अपने अगले वाले को बता दो। फिर अगले वाले ने बताया, उसने बताया, आखिर वाले ने कहा बादशाह का इंतकाल हो गया है। क्योंकि जब ये इंसानों के पास से गुजरती है तो रिवायतें बदल जाती। तो अजाने गिरामी, असल हमारा मकसद है बनी इसराइल की जो दास्तानें भी हैं उनकी सनद पे। अल्लामा मजलिसी ने भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं, इतना वक्त था हमारे पास अल्लामा मजलिसी के पास के, लेकिन इन वाक़यात को बयान किया गया, उससे कोई भी जो है नेगेटिव थिंकिंग्स का मसला नहीं आना चाहिए। असल एक बात थी, इसलिए कि जब हम कोई काम करना शुरू करें तो सबसे पहले हम खुद कंट्रीब्यूशन करें, खुद हम अपना हिस्सा दें, उसके बाद हम किसी से मांगने का हक रखते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हाँ जो मसाइल उलझे हुए हैं उनको जब पूछा जाता था तो आले मोहम्मद ने उसका जवाब दिया है। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि आज ही होते हैं सवाल करने वाले, उस जमाने में भी बहुत थे। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, बहुत से तो शैतान की बीवी का नाम पूछ लेते हैं, मौलाना क्या है। उस जमाने में भी इमाम जाफर सारिक अलैहि सलाम से सवाल किया गया, बहरहाल मेरी दरख्वास्त है थोड़ा थोड़ा आप अगर आगे आ जाएं, चूंकि आज वीकेंड है तो इंशाल्लाह सवाब में इजाफा होगा, वीकेंड में इजाफा होगा। जिनको मुंह होना था वो तो हुए ही नहीं, उन्हीं की वजह से तो मसला है। पीछे पीछे वाले मेरे बिरादरान अजीज, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, शरीयत का एक फार्मूला है, कोब इकाब बिला बयान, बगैर बयान किए हुए किसी को अजाब देना, इकाब देना। इमाम से पूछा गया कि फर्जंद रसूल, हज़रत खिज्र और हज़रत मूसा के वाक़े में हज़रत खिज्र ने जिस बच्चे को, जिस जवान को मारा, आखिर उसने किया क्या था? और जुर्म से पहले तो इस्लाम किसी को सज़ा की इजाज़त नहीं देता, यानी अब मसला मौलानाओं पे नहीं मौला पे भी है। तो कहा कि ऐसा क्यों हुआ? इमाम ने फरमाया कि देखो, जब तक नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नबी थे और इस मसले को कर सकते थे। कहा क्यों? कहा आखिर वो जवान क्यों मारा गया बेचारा? माँ बाप तो फिर भी बूढ़े थे, अगर वो अपने माँ बाप को कत्ल भी कर देता तो बहरहाल उन माँ बाप की नस्ल तो बच जाती, उस जवान को क्यों मारा गया? तो इमाम ने फरमाया कि उन माँ बाप के ज़रिए एक लड़की को इस दुनिया में आना था, जो बाद में एक लड़की की विलादत हुई और उस लड़की की नस्ल से बनी इसराइल के 70 अंबिया पैदा हुए। वो जवान जाके अपने माँ बाप को कत्ल कर देता, लेकिन हज़रत खिज्र ने उनको कत्ल कर दिया। तो खुदावंद आलम बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या मसाइल, और इस तरीके की दास्तानें जो हैं हज़रत मूसा के ज़माने से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बनी इसराइल के नाम पे बयान की गई हैं, लिहाजा जो है उलमा भी इसको बयान कर देते हैं, ज़ाकरीन भी इसका ज़िक्र कर देते हैं। उनकी सनद का मामला कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, क्योंकि इससे कोई इस्लाम की हैसियत पे फ़र्क नहीं पड़ना। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक बड़ा ज़ालिम बादशाह था, बड़ा ज़ुल्म करता था, बड़ा ज़ुल्म करता था, और उसी ज़माने में एक बड़ा नेक बादशाह था, वो अपनी रियाया के साथ बड़े अच्छाई से पेश आता था। तो जो ज़ालिम बादशाह था वो बड़े जुल्म करता था, वो एक दिन बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो सबने दुआ की कि खुदाया अब इसको उठा ले, वक्त आ गया इसका। हमने दुआ की, यानी बददुआ की। हकीमों ने एक मछली को तजवीज़ किया कि एक मछली है जो अपनी ज़िंदगी में एक बार ऊपर आती, अगर वो मिल जाए तो उससे दवा तैयार हो और ये सही हो सकता है। सब ने कहा खुदाया इसके लिए मछली ना मिले। इत्तेफाक की बात ही, जब मछली पकड़ने गए तो वही मछली उस दिन मिल गई, उसकी दवा बनी, और वो ज़ालिम बादशाह फिर और थोड़े बहुत दिनों के लिए काम शुरू हो गया उसका। इसी मर्ज में वो बादशाह मुब्तला हुआ जो नेक था, वही दवा तजवीज़ की गई, लोगों ने खुदाया तो ज़ालिम के साथ ऐसा करता है तो इसके साथ भी कर दे। बहुत ढूंढा, मछली मिली नहीं, वो बेचारा नेक बादशाह इस दुनिया से चला गया। अब तो हजरत मूसा पे सवाल के सवालात पे सवालात, बहुत सवालात कि मौसा ये क्या हो गया, उसने जालिम के लिए तो मिल गई और मजलूम के लिए नहीं मिली। बहुत सवाल हमसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि वो साहब हजरत इस्माइल की जगह बकरा आया था, आप तो कहते हैं कि ऊंट की भी कुर्बानी, तो ऊंट क्यों नहीं आया था, ऊंट क्यों नहीं आया था, गाय क्यों नहीं आई थी, बैल क्यों नहीं आया था, जो हलाल जानवर है। तो भाई अगर ऊंट आ जाता तो फिर आप फिर सवाल करते कि बकरा क्यों नहीं आया था। तो बाज़ औक़ात जो है इंसान सवालात पे सवालत करता। तो कहा मूसा ये बयान कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मूसा तूर पे गए, कहा मूसा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, ना ये दुनिया जानती। मसला ये है कि वो जो इनकी नज़र में जालिम बादशाह है, इसने पूरी ज़िंदगी जुल्म करने में गुजारी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कुछ नेकियाँ भी थी, और हम उन चंद नेकियों के बदले में इसके इतने बड़े गुनाह को माफ़ नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमें इसका इनको अजाब देना, इसको अजाब देना था, लेकिन हमारा इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको उस नेकी की जजा मिलनी थी, लिहाजा हमने इसके लिए मछली को मुहैया करा दिया और उन नेकियों के बदले में दुनिया में कुछ दिन की ज़िंदगी और दे दी, ताकि अब ये जो है जहन्नम के लिए बुक हो गया है, जो नेकियाँ थी उनका मामला हो गया, सिला मिल गया। और वो नेक बादशाह जिसकी पूरी ज़िंदगी नेकियों से भरी है, उसकी ज़िंदगी में कुछ गुनाह भी थे, चूँकि इसकी नेकियों का हिसाब किताब ज़्यादा है और ऐसा ज़्यादा है कि ना पूछो, लेकिन चंद गुनाह थे उसके बदले में इसको सज़ा देनी ज़रूरी थी, लिहाजा हमने इसकी ज़िंदगी के कुछ दिन कम कर दिए, मछली के ना मिलने से, दवा के ना मिलने से हमने इसकी ज़िंदगी के कुछ दिन कम कर दिए। बज़ाहिर लोगों को लग रहा है ये जल्दी चला गया, लेकिन हमने इसको बहिश्त के लिए महफूज कर दिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जिससे रिलेटेड मसला होता है असल में उसको उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ़ वहाँ होती है जहाँ जिनसे रिलेटेड नहीं। तो इन वाक़यात को जो हिकायत है कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नेक बादशाह भी हो और एक अच्छा बादशाह भी हो, मैं अक्सर एक वाक़या बयान करता रहता हूँ कि वो एक ऐसे ही दो मुल्क थे, उन मुल्कों में एक जगह अमन अमान था, दूसरे में अमन अमान नहीं था, तो जहाँ अमन अमान नहीं था उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उस मुल्क में भेजा जहाँ पर ना अमनी थी, जहाँ पर अमन था। उस बादशाह ने बिठाया इसको और बिठाने के बाद जेवरात पहनाए, मुकाम दिया दरबार में, कहा बताइए कैसे आना हुआ। कहा मेरे बादशाह ने पूछा है कि आपने आपके मुल्क में अमन अमान क्यों है और हमारे मुल्क में अमन अमान क्यों नहीं। तो बादशाह ने बजाय इसके कि उसको जवाब देता, कहा इसको गिरफ्तार कर लो, जिंदान में डाल दो। उसने कहा सरकार अगर आपकी कोई उस बादशाह से तकरार है तो आप जाने वो जाने, मैं गरीब आदमी, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। कहा नहीं, ले जावे। उन बेचारे को लेगा जिंदान में डाल दिया। कहा ये तो पूछो कब तक बंद रखना है। कहा वो बादशाह खुद ही बताएंगे, फिलहाल यही हुक्म है कि आपको बंद कर दिया। अगले दिन बादशाह दरबार में आए, आने के बाद जिंदान में आए, कहा सरकार मुझे ये तो बताइए कि गलती क्या है मेरी। कहा वो तो मेरी बताई जाएगी। और कहा कि फिर ये तो बता दीजिए कब छोड़ेंगे। तो जिंदान के सामने एक दरख्त था, कह लगे जब ये सूख के गिर जाएगा तब छोड़ देंगे। उसने कहा सरकार कोई और दूसरी बात बयान करो, ये डील सही नहीं है, ये मामला सही नहीं है, ये कब गिरेगा। वो तो बादशाह कह के चले गए। अब उसने दरोगा जिंदान से पूछा कि भाई ये दरख्त कब से है। कहा जी मेरे दादा भी यहाँ दरोगा थे, मैं इसके नीचे खेलता था, छोटा सा था तब भी था ये, फिर मेरे बाप यहाँ के दरोगा बने, जेलर बने, तब भी मैं यहाँ आता था, जवानी भी मेरी यहाँ गुजरी, और अब खुद मैं जिंदान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 साल से, तो मेरे सामने भी ये दरख्त है, और बड़ी आंधी तूफान आए, मैंने बड़े दरख्तों को गिरते देखा, इसको तो हिलते भी नहीं देखा, लिहाजा 150-200 साल का मामला तो है। अब उसने उसको डरा दिया कि ये तो जाने वाला नहीं है मामला, और शर्त भी ये है कि सब मसलन सूख के गिरे, ये नहीं कि मसलन गिर जाए, सूख के गिरेगा तब। अब वो कह के चला गया बेचारा, सुबह ही सुबह उठता, टाइम टेबल यही था कि उसको देखता था दरख्त को और गुफ्तगु करता था अपने दिली दिल में। एक दिन क्या हुआ कि वो दरख्त सूख के गिर गया। सूख के जब गिर गया तो दरोगा जिंदान ने बादशाह को इत्तला दी कि सरकार वो जो आपने शर्त रखी थी वो शर्त तो पूरी हो गई है, वो तो अचानक सूख गया और सूख के गिर गया। बादशाह फौरन जेवरात लेके आया और बड़े जो बादशाहों के तौर तरीके होते थे इस्तकबाल के, वेलकम के, वो सब जो है उसके लिए ड्रेस वगैरह बढ़िया लेकर आया और कहा कि इसको पहनाओ। उसने कहा सरकार एक मर्तबा पहना था तो फंस गया था, अब मैं आपकी कोई चीज़ पहनने वाला नहीं। कहा कि नहीं हम तुम्हें, कहा सरकार ना मैं वहां जाऊंगा ना मैं तो अपने बीवी बच्चों के पास जाऊंगा, अब मुझे आप लोगों की नौकरी करनी नहीं। कहा नहीं हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। कहा कि शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कहा कि अपने सवाल का जवाब, कहा सरकार एक बार सवाल किया था तो फंस गया, वो तो न जाने किसका करम हुआ है जो हो गया, तो तमाम की तमाम। तो बादशाह ने कहा कि देखो तुम्हारे सवाल का जवाब ये दरख्त है, तुम्हारे बादशाह के सवाल का जवाब ये दरख्त है, हमने तुम्हें बेगुनाह बंद कर दिया और वजह यह बताई कि जब तक ये ना गिर जाए तो तुम सुबह सुबह अपनी बेगुनाही के साथ, चूंकि तुम पे जुल्म हुआ है लिहाजा तुम मजलूम हो, मजलूम की आह ने एक हरे भरे दरख्त को सुखा के गिरा दिया, एक हरे भरे दरख्त को सुखा के गिरा दिया। जब एक मजलूम की आह इतना बड़ा काम कर सकती है तो अपने बादशाह से कहना तेरी हुकूमत का सिस्टम चेक करके उसमें कितने मजलूम हैं कि जिनकी आह ने हुकूमत की चूल्हे जो है हिला रखी है, तख्ते हुकूमत को हिला रखा है और वहाँ ना अमनी है। अज़ीज़ान गिरामी, अदल और इंसाफ के बगैर अमन आना इम्कान ही नहीं। इतने लोग आते हैं मौलाना को ऐसा तावीज़ बना दीजिए कि जिससे घर में बिल्कुल अमन व अमान हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ना कोई तावीज़ की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ अपने सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है कि आया हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में आया हम किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे हैं, कोई दबी हुई आवाज़ हमारे घर में तो नहीं आ रही है, कोई दबी हुई आवाज़ हमारे महल्ले से तो नहीं आ रही, कोई दबी हुई आवाज़ हमारे शहर से तो नहीं आ रही। अगर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस सिस्टम को चेक कर ले जो सिस्टम है अदल है, तो फिर किसी तरह की नाअमनी नहीं रहेगी, ये गुलजार बन जाएगा। क्योंकि खुदावंद आलम ने अपने नबी को इसलिए भेजा कि अए नबी ऐसा बाग लगाओ, ऐसा शहर बसाओ जहाँ पर अमन व अमान की ज़मीन हो, इंसाफ का आसमान हो, प्यार मोहब्बत के दरख्त खिलते हों, प्यार मोहब्बत से लोग रहते हों, एक दूसरे के दर्द को समझते हों, एक दूसरे की परेशानी को जानते हो। नबी हम ऐसी मिल्लत चाहते हैं, और अगर ऐसी मिल्लत मिल गई तो हम उस मिल्लत को मरहुमा करार देंगे, यानी रहम शुदा मिल्लत, कि फिर इस पे कोई अजाब नहीं आएगा, कोई गज़ब नहीं आएगा। तमाम की तमाम मुकामात पर अजीज़ान गिरामी, अल्लाह की तरफ से जितने भी बादशाह भेजे गए हैं, अल्लाह की तरफ से भी जितने रहबर भेजे गए हैं हमारे लिए, जिनको लोग बादशाह नहीं मानते लेकिन हम अपना रहबर और बादशाह सब कुछ मानते हैं, तो परवरदिगार आलम ने बताइए कि कौन सा ऐसा हमारा रहबर है कि जिसके यहाँ पर ना इंसाफी पाई जाती। तमाम के तमाम, सबसे पहली शर्त ही हमारे यहाँ मासूम होना है। इसमत एक ऐसी शर्त है कि जिसमें फिर जुल्म का इम्कान ही नहीं होता, लिहाजा उनको छोड़कर अगर हम गैर के हमने बदले हैं रास्ते अपने, इसलिए मुश्किलों ने घेरा है, बुग्ज़ हैदर निकाल दो दिल से, मान जाओ अभी सवेरा है। तो अगर हम अपने दिलों से उस इमाम अदल को ले आए, इमाम अली अलैहिस्सलाम के वाक़यात को हम पढ़ते हैं, बयान करते हैं, मानते हैं, आलम इस्लाम अपना चौथा खलीफा कहता है, और वाकई मौला अली कोई गैसरी क्या हमारे हैं नहीं, सबके हैं मौला कायनात, बल्कि ऐसे ऐसे मुकामात पे आप सोच नहीं सकते। एक जगह मैं गया तो मेरे को ले गए तकरीर करने के लिए पहलवानों के अखाड़े में, कहने लगे मौला अली की कोई कुश्ती बयान कीजिए। मैंने कहा सरकार ये तो नफ्स से लड़ना उनका काम था, उनका काम ये वाला नहीं था जो आप करें, सलवात पढ़े मोहम्मद। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसाफ होता है तो दुनिया के हर कोने में उसकी पुकार होती है, उसकी अदल का इंसाफ का चर्चा सुनकर, वाकया और दास्तान को सुनकर दुनिया के किसी भी कोने का मजलूम क्यों ना हो वो उसका तरफदार बन जाता है, उसका तरफदार बन जाता है। और हुकूमत को बनाने का सबसे पहला अवजार ही यही है, टूल यही है। इसी वजह से दुनिया में चाहे जो हो, सबसे पहले जो बैनर तैयार होता है वो ये कहता हम इंसाफ दिलाएंगे, मौलाए कायनात की हुकूमत का जो है वो बैनर बनवाता, कहता है कि हम इंसाफ दिलाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, और लोग ये कहते हैं कि अली को किसी ने नहीं मारा, उनके इंसाफ ने मारा। अल्लाह अकबर, हम खुश नसीब हैं कि उस इमाम के मानने वाले हैं कि लोग जिसके लिए बुराई का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि एक अच्छाई के जरिए उसको, वो उनकी खता है, उनकी बुराई है कि उन्होंने उनको इंसाफ की वजह से। लेकिन इमाम जो हमें चीज दे के गए हैं, हम इस बात को जाने, हम अपनी इस बात को माने कि हम मौला के अगर पैरोकार हैं तो क्या हमारी जिंदगी में इंसाफ है? क्या हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ करते हैं? जिस तरह की तरबियत उनकी होनी चाहिए क्या हम उनको ऐसा वक्त देते हैं? क्या हम अपनी अजवाज के साथ इंसाफ करते हैं, जिस तरह की उनके साथ हमारी डीलिंग होनी चाहिए उसको डीलिंग दे करते हैं, क्या जिस तरह का हमारा एकदम क्लियर उनके साथ मामला होना चाहिए क्या हम इस तरह का मामला करते हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हो, चाहे वो हमारा बिजनेस सर्किल हो, हम तमाम मुकामात पर कोशिश ये करते हैं कि हम अपने एतबार से उसको डील करें, हम अपने इमामों के एतबार से उसको डील नहीं करते। अगर हम अपने इमामों के एतबार से उसको डील करने लग जाएं तो दुनिया का कोई इंसान हमारे से हमसे दोस्ती करने, चूंकि आज पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो क्रेडिट ही तो है कि जिसका क्रेडिट अच्छा है वो सबसे बड़ा शरीफ है। आजकल शरीफ उसी को कहते हैं कि जिसका क्रेडिट सही हो, यानी मामला जिसका सही है उसका क्रेडिट सही है। आप दुनिया भर के दमाजी मुत्तकी हैं, अगर आपका एक कार्ड पे पैसे जमा नहीं कराए तो वहां पर आपका क्रेडिट खराब कर दिया जाता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हम यहाँ के क्रेडिट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं, लेकिन आखिरत के क्रेडिट के बारे में हम जरा बराबर नहीं सोचते। बहुत से खुदा कहता है कि लाओ तुम्हारा सारा क्रेडिट मैं साफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा, शबे कदर में आ जाओ। कहता है नहीं, कहता है कि शबे कदर में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दूंगा। वाकई अगर हम इसको, पहली बात तो खुदा से कहते खुदा हम खताएं नहीं मानते। एक जगह मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा कि कल आमाल आशुरा का इन आपके आमाल खराब है जो आप ही करिए, आपके ही आमाल खराब हैं, आप ही कीजिए। बड़े अच्छे अजीब अजीब मकामात पे हमारा इत्तेफाक पड़ता है। एक जगह हमने एक मुबल्लिग को भेजा बेचारे से, मैंने कहा वहाँ का मामला थोड़ा बड़ा सख्त है, परेशान हो तो जवाब मत देना, मुझे फ़ोन कर लेना। चूँकि मैं उनको देखता रहता था, टेक केयर करता था सारे मुबल्लिग की, तो उनसे पूछा सरकार अगर कब्रिस्तान ना हो तो गैर के कब्रिस्तान में बगैर इजाजत के दफना सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं दफना सकते, इजाजत शर्त है। कहा वो बहुत जिद्दी हो, इजाजत नहीं देते हो तो हम तो दीवार कूद के कर सकते हैं, आप बताइए बस एक मरतबा। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं कर सकते, तुम तो दीवार कूद जाओगे लेकिन वो बेचारा कहाँ भागेगा उठ के कि जिसको तुम दफना के आए हो। कहने लगे कि नहीं आप कोई रास्ता बताइए, कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है उनको किसी ऐसे कब्रिस्तान में दफना दे जाए इजाजत मिल जाए, सरकार इम्कान ही नहीं है, जब अपने नहीं दे रहे तो दूसरे कहाँ देंगे। उन्होंने कहा भाई बहरहाल मसला यह है कि आप ऐसा कीजिए कि आप ज़मीन खरीद लीजिए उनके लिए और फिर उनको वहाँ दफनाइए। कहा सरकार इतना मसला होता तो आपसे पूछते क्या। तो उन्होंने कहा भाई आप इनको पड़ोस के गाँव में ले जाइए, मुमकिन है गरीबुल वतन समझ के जगह मिल जाए। कहा सरकार वो भी इम्कान नहीं। उन्होंने कहा फिर घर के सहन में दफना लो। कहा वो भी किराए का है। उन्होंने कहा कि भाई ये भी किराए का है, ये भी है, ये बड़े परेशान हूँ। उन्होंने कहा भाई आप सब चंदा करो। कहा कोई मदद करना नहीं चाहता। तो कहा कि फिर क्या किया जाए। तो उस जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एक नदी बहती थी, कहा उसमें डालिया हो इसको। कहा सरकार कब्र का निशान कैसे पता चलेगा, अगर हम नहर में फेंक देंगे तो बह जाएगी, फिर कब्र का निशान कैसे। कहा पत्थर बांध के फेंकिएगा। कहा सरकार फिर तलकीन कौन पढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी की ना तलकीन है, ना सोयू में है, ना चैलू में। अब अगर इससे आगे सवाल किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो मुझे फ़ोन किया कि सरकार मुझे आपने कहाँ फंसा दिया, ये तो कुछ करते नहीं है, मुझे बड़ा संगतंग करते। तो बाज़ औक़ात सवालात इतने किए जाते हैं लेकिन उसका मसला ये नहीं होता कि हल करें। अगर जिस दिन हम हल करने की गरज से पूछेंगे उस दिन मसला हमारा हल भी हो जाता है, लेकिन हम मसले को हल करने की वजह से नहीं पूछते बल्कि हम मसले को मसला बनाने की वजह से पूछते हैं ताकि हम बाद में तफरी ले सकें। अरे उन मौलाना को तो कुछ नहीं आता, मौलाना को कुछ नहीं आता। मैं आपको फिर बता दूं, हम लोगों को तकरीबन 340,000 मसले सिखाए जाते हैं और तौजिल मसाइल में होते हैं 2700 मसले। कितनी मरतबा आप ज़्यादा सोच लेंगे। अगर फिकही मसला है तो आप कहीं नहीं जा सकते आलिम से निकल, शर्त यह कि बस मैं पढ़ा हूँ, उससे बाहर जाके आप सोच भी नहीं सकते, इम्कान फिक्र नहीं है। वो नया मसला आता है वो अलग मसला है, उसके लिए हमारे इमाम ने जिम्मेदारी ली है कि हम जिम्मेदार हैं। और वो वाकया भी है कि एक जो है मसला आया मर्जे तकलीद के पास कि सरकार एक खातून का इंतकाल हो गया और उसके शिकम में बच्चा है, तो क्या बच्चे को निकाला जाए ऑपरेशन के ज़रिए या उसको दफना दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हुरमत है, मसला है, लिहाजा दफना दो। अब ये कह के दफना दिया, देने के लिए ले गए उन्हें। फिर एक रोज़ देखा कि मसलन एक बच्चा खेल रहा था, का सरकार का बड़ा प्यारा बच्चा, का सरकार ये आपने जो आखिरी वक्त में फतवा बदला था ये आपके रहमो करम की वजह से ये बच्चा है। कहा कौन सा फतवा। कहा पहले तो आपने ये कह दिया था कि इसकी माँ को इसी तरह से दफना दिया जाए, लेकिन बाद में आपने किसी जवान को भेज के कहा कि नहीं मौलाना का फतवा बदल गया है और उन्होंने बताया कि नहीं बच्चे को निकाल लिया जाए। लिहाजा आखिरी वक्त में ही मसले को। कहने लगे मुझे तो कोई इस तरह का याद नहीं, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी खता हो रही थी, इतनी बड़ी गलती मैं करने जा रहा था। लिहाजा तमाम के तमाम असबाब छोड़े, दुनिया को छोड़ा और सहरा में निकल गए, सहरा में निकल गए और कहने लगे कि मैं इतनी बड़ी खता के अल्लाह ने मुझे एक जगह दी कि जिसकी वजह से लोगों की मैं जिंदगी के बारे में मसाइल को हल करूं, मुझसे इतनी बड़ी खता हो रही थी। किसी जाने वाले ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा तुमसे क्या मतलब, कहा हमसे ही तो मतलब है और किससे मतलब, जाओ अपने मुकाम पर वापस जाओ। कहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती, कहा फिर हम कौन क्यों हैं, हम बैठे हैं, हम तुम्हारी सरपरस्ती में बैठे हैं, खुदा की कसम अगर हमारा जमाने का इमाम हमारी सरपरस्ती में ना हो तो हमारे मसाइल को तो दुनिया कब का बंद कर चुकी है, ये मकतब कब का बंद हो चुका है। यहां पर जो है इमाम की ताईद, साहिब जवाहर का जमाना यही तो है, साहिब जवाहर जब उनकी आखिरी उम्र थी, जब आखिरी उम्र थी तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि ठीक है मैं अब मैं इस लायक नहीं रहा, मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, तुम मरजियत का ऐलान कर दो, अब मसाइल लोगों के तुम बयान किया करो। तो उन्होंने कहा कि सरकार वो बात सब सही है लेकिन जो है मेरे जो आपके एक और शागिर्द थे जो अहले गुरगान थे, गुरगान के रहने वाले थे ईरान के, तो कहा कि वो जब हम दोनों मुबाहसा करते तो उनके जल्दी समझ में आता था, लिहाजा ये उनका हक है, ये उनका हक है। तो उन्होंने आयतुल्लाह गुरगानी को कहा कि तुम आपस में मेरे दोनों शागिर्द हो, मसला हल कर लो। कहा कि नहीं, आप उनको बहरहाल खत भेजा कि इस तरह से मरजियत का मसला है, अब आगा की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप मुझसे पहले समझ जाते थे, आपका इल्म ज़्यादा है, आपकी फ़िक्र ज़्यादा काम करती है, लिहाजा आपको मुश्तैद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेशक वो ज़माना था जब था, लेकिन अब तुम दरे अमीरुल मोमिनीन पे बैठे हो, नजफ़ में बैठे हो, वहाँ के मसाइल को तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वो मरकज़ है, लोग वहाँ आते हैं मौला की ज़्यारत को तुम्हारे मसाइल को, और फिर मौला के होते हुए तुम परेशान क्यों होते हो। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा इमाम मेरी ताईद नहीं फरमाया मैं किस तरह से सौदे को कबूल कर लूँ। तो ये बात कह के अपने आखा अपने मसाइल बयान कर रहे थे अपने उस्ताद के, तो कोई आया, आने वाले ने कहा कि शेख एक मसला पेश आ गया फ़िकी। कहा क्या मसला पेश आ गया। कहा कि एक औरत का शोहर मस्क हो गया है, उस औरत का क्या हुक्म है। कहा कि अभी तक तो कोई ऐसा मसला आलम इस्लाम में पेश नहीं आया, लेकिन हाँ अब मसला इज्तिहाद का है। अच्छा ये बताओ कि वो मस्क होके जानवर बन गया है या पत्थर बन गया है। कहा कि अगर जानवर बन गया है तो उस औरत के लिए क्या हुक्म है, और अगर पत्थर बन गया है तो उसके लिए क्या हुक्म है। कहा अगर पत्थर बन गया है तो पत्थर मौत की निशानी है, लिहाजा उस औरत को इद्दत वफात पूरा करना चाहिए, वफात की इद्दत पूरी करनी चाहिए। और अगर उसका शोहर जानवर बन गया है तो उसको इद्दत तलाक, चूंकि जानवर से फिर शादी नहीं, का इद्दत तलाक पूरी करनी चाहिए। आने वाले ने तायद की कि मैं तायद करता हूँ कि आप मुश्तईद हकीकी हैं, और ये कहकर गायब। यानी इमाम के वाकयात से किताबें भरी हुई हैं, हम उन मसाइल को हल नहीं करना चाहते, हम मसाइल को हल नहीं करना चाहते, हमारा इमाम हमारे मसालों को हल करना चाहता है और हमारे मसाइल को हल करना चाहता है। इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ इस वाक़े को, लेकिन फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हम कुम की सरजमीन पर पढ़ते थे, आगा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जब अफ़गानिस्तान का मसाइल चल रहे थे जंग के, तो एक शख्स था उसकी उस जंग के दौरान पूरी फैमिली को मार दिया गया, वो अकेला बचा बेचारा, तो वो ईरान आ गया। आने के बाद बेसरो सामाना ज़िंदगी, बड़ा मुखलिस इंसान, उसने इमाम से वादा किया कि फ़र्जंदे रसूल अगर मुझे आप कारोबार देंगे तो आधा आपका आधा मेरा, ये वादा करके ईरान आ गया। कुम में आने के बाद उसने शू मेकर की दुकान खोली, ख़याबान इरम जो आज भी मौजूद है वहाँ पर उसने अपनी दुकान खोली। बहुत लंबा वाक़या नहीं, तकरीबन 20-25 साल का वाक़या है। वो शख्स आया और आने के बाद उसने होटल इरम के नीचे वो अपनी जूते की काम करने की छोटा सा बॉक्स खोला और आने के बाद बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी को गुजारा, धीरे धीरे चलने लगा। पैसे जब सारा दिन कमा लेता था तो आधा निकालने के बाद एक मस्जिद होती थी, मस्जिद मोहम्मदी, अक्सर वहाँ मजलिसें हुआ करती थी इसाले सवाब की, अब वो जो है बड़ी मस्जिद में शुमार हो गई है। लिहाजा उस मस्जिद के पेश नमाज को जाके कहता था कि इमाम के ख़जाने में डाल दो। तो वो ये सोचते थे कि इसके पास खुम्स तो रोज़ वाजिब होता नहीं, इसके ज़कात के हालात नज़र नहीं आते, और नजरात ये रोज पैसे देके जाता है, कभी थोड़े कभी ज्यादा, कभी थोड़े कभी ज्यादा। एक दिन उन्होंने कहा मैं आपके पैसे नहीं लूंगा, पहले बताइए पैसे हैं कैसे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी वादा है इमाम से कि सूरज डूबने से पहले मैं आपका हक पहुंचा दूंगा, आपका हिस्सा पहुंचा दूंगा, लिहाजा पहले आप इसको पकड़िए उसके बाद मैं बता दूं, लेकिन आप किसी से कहिए। उन्होंने कहा भाई ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने इमाम से वादा किया जो कुछ कमाऊंगा आधा आपका आधा मेरा, लिहाजा इमाम ने फिर मुझे किसी का मोहताज बनने नहीं दिया, मैं इज्जत से कमाता हूँ, जो कुछ कमाता हूँ आधा इमाम के हवाले करके चला जाता हूँ, मेरा रोज़ का तरीक़ेकार है और मैं सूरज डूबने से पहले ये दे देता हूँ। बहरहाल ये कह के चले गए। कहते हैं कि जब उस मस्जिद में कोई बड़े आलिम दीन मजलिस के लिए आए थे, किसी की चहलुम की मजलिस पढ़ने के लिए, तो मस्जिद के पेश नमाज ने उनसे कहा आका मैं इस पैसे को किस मद में रखूँ, नज़र कहलाएगा, खुम्स कहलाएगा, ये कौन सा पैसा है रुकू में शरी में इसको शुमार किया जाएगा। तो उन्होंने फिर वाक़ पूछा कि मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो अपने इमाम से वादे पे पाबंद है और इस तरह से हर रोज़ अपने आधे पैसे सूरज डूबने से पहले दे जाता है। कहा मालूम है वो कहाँ रहता है? कहा सर कहा रहने का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ देखा इधर इस होटल के नीचे वो अपनी जूतियाँ गाँटने की दुकान लगाता है, वहाँ पर मैंने देखा। ये आलिम दीन पा बरहना उसकी तरफ दौड़ते हुए गए। कहते हैं कि मैं चाहता था उससे मुलाकात के लिए, जब मैं उसके सामने पहुंच गया तो रोड के उस तरफ वो बैठा हुआ था, काम कर रहा था अपना, रोड के इस तरफ मैं था, मेरे पैर जम गए, मैं चल नहीं सकता था, मेरा जिस्म हिल नहीं सकता था। मैंने देखा कि एक रूहानी शख्सियत उसके पास खड़ी है, वो अपना काम करता जाता है, वो उससे कुछ पूछता है, वो सर उठा के उनका जवाब देता जाता है, वो मुस्कुराते जाते हैं फिर जवाब देते जाता है, बातें कर रहे हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर गुजरी थी कि वो रूहानी शख्सियत गायब हो गई। जैसे जब वो शख्सियत गायब हो गई तो मेरे पैर अपनी ज़मीन से उठे और मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। मैंने कहा ये कौन था जो तुम्हारे पास खड़ा था? उसने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन कोई नेक है जो रोज़ मेरी खैरियत पूछने आता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कि रोज मेरी खैरियत पूछने आते हैं। अल्लाह अकबर, फरजंदे रसूल अब आपको कहाँ नहीं ढूंढते। लेकिन अजीजान गिरामी, हम अपने अंदर इंसाफ करें अपनी ज़ात में कि हमने ऐसे कितने काम किए हैं जिसकी वजह से हम इस बात का दावा करें कि फरजंदे रसूल आप नहीं मिले। शेख इब्राहिम का वाकया, नजफ अशरफ में रहते थे शेख इब्राहिम, बड़े मौलाई, मौला आपकी ज्यारत करनी है, मौला आपकी ज्यारत करनी है, दुआ नुदबा तमाम चीज़ें। ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा आ गया, मायूस होने लगे कि फरजंद रसूल इतनी बड़ी मायूसी नहीं देखी, इतनी बार पुकारा आप नज़र नहीं आए, मुलाकात नहीं की, क्या करें फरजंद रसूल। जब इस लायक हो नहीं रहे कि उठ सके, क्या देखा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन? कहा शेख इब्राहिम मैं तुम्हारे इमाम का नुमाइंदा हूँ, क्या चाहते हो? कहा इमाम ने तुम्हें याद फरमाया है। शेख इब्राहिम हिम्मत आ गई, कहा कहाँ है मेरा इमाम? कहा फला देहात में आपको इमाम ने बुलाया है। कहा कि वहाँ पे किस जगह? कहा वहाँ पहुँचिए उसके बाद बताया जाए। शेख इब्राहिम फौरन उस देहात में पहुँचे, जाके सराय में इंतज़ार किया, फिर वही नुमाइंदा मिला के शेख इब्राहिम फरजंद रसूल बाजार लोहा में खड़े हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पे लोहे का सामान मिलता है, आयरन मार्केट। कहा वहां पे कहां? कहा वहां पर एक हुज्जत अंसार नाम का लोहार है, उसकी दुकान पे खड़े। हुज्जत अंसार कौन है इसका मरहला सुन लीजिए। कहते हैं कि उसी इलाके में एक ज़ईफ़ा थी बुढ़िया, वो मकरूज थी, कर्जदार थी 5 दिरहम की। ऐसा ने ग्रामी कर्ज का मरहला बड़ा सख्त मरहला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर किसी से कुछ नहीं पूछा सिवाय कर्ज़े के, कुछ नहीं पूछा किसी से कि तुमने क्या किया है क्या नहीं। इमाम जानते थे कि किस मरहले में, सिर्फ ये पूछा कि शहीद को सब कुछ माफ़ है, कर्जा माफ़ नहीं। लिहाजा इमाम ने पूछा कोई कर्ज़दार तो नहीं? इमाम का एक सिपाही खड़ा हुआ, फरजंद रसूल मैं मकरूज हूँ। किसके? का फौज शाम में है वो। आपने उसको अपनी रकम से रकम दी और कहा जाओ अपना कर्जा अदा करके आओ। मालूम है कि कुछ देर बाद सर बरसेंगे, वो इनके खून के प्यासे हो जाएंगे, लेकिन कर्ज की अदायगी कर। वो बुढ़िया भी इसी जौफ से, इसी खौफ से कि ऐसा ना हो कि मैं मकरूज मर जाऊं। अपने 5 दिरहम के कर्जे को उतारने के लिए उसके पास कुछ ना था, एक ताला था जिसकी चाबी खो गई थी। उस ताले को बेचने के लिए बाजार में आई कि भाइयों मेरा ये ताला ले लो ताकि मैं अपना कर्जा उतार दूं। अब आपको तो मालूम है कि अगर पता चल जाए किसी को कि ये मजबूर है तो फिर उस मजबूरी का फायदा कितना उठाते हैं आप सोच नहीं सकते। कह लगे नहीं नहीं ये तो 3 दरहम से ज्यादा इसकी कीमत नहीं। कोई 3 कहता है, कोई 3.5 कहता है, कोई 4 कहता है। उसने कहा ना मुझे 5 में बेच, ना मुझे 4 में बेचना है, ना 6 में बेचना है, मुझे तो 5 चाहिए ताकि मैं इसको दे के अपना कर्जा अदा करूं। पूरे बाजार में घूमती रही लेकिन उसके इस ताले को खरीदार नहीं मिला। ये टहलती हुई जब इस मसाइल को लेके हुज्जत अंसार की दुकान पर पहुंची, कहा कि भाई मैं ये 5 दिरहम में बेचना चाहती हूँ। उसने कहा 5 में क्यों बेचना चाहती है, तो 8 दिरहम की कीमत रखता है ये ताला, तो 8 दिरहम का। कहा नहीं मैं 5 में। कहा कि मुझे 5 में नहीं खरीदना, मुझे 8 में खरीदना है। अभी तक मामला क्या था, 3 में और 4 में और 3.5 में लोग अटके हुए थे। अज़ीज़ाने गिरामी ऐसे लोग जन्नत खरीदते हैं। मामला ये था कि वो देख रहे हैं कि 3 और 4 इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वो बयान कर रही है अपनी मजबूरी को, लेकिन कोई मजबूरी सुनने को तैयार नहीं है, अपने फायदे को ज्यादा हासिल करने में। हुज्जत अंसार ने कहा कि मैं आपसे 8 दिरहम की चीज को 5 में नहीं ले सकता, माफ कीजिएगा। कहा क्यों? कहा 8 में लूंगा, 1 की चाबी लगाऊंगा, 10 में बेच दूंगा। इसका सीधा सा मेरा फलसफा, मैं बैठा हूं कमाने के लिए, इतना ही मेरा हक बनता है आटे में नमक। उसने कहा कि अब वहां तकरार यह है कि कम में देना चाहती है, वो ज्यादा देना चाहते हैं। अलगरज 8 दिरहम में मामला तय पाया और वो ज़ईफ़ा 8 दिरहम लेके चली गई। इमाम ज़माना खड़े हुए, हुज्जत अंसार बोलना चाहते हैं, फरजंद रसूल, इमाम ने आंखों को उंगली लगा दी कि चुपचाप खड़े रहो। जब वो ज़ईफ़ा चली गई तो इमाम ने फरमाया, शेख इब्राहिम क्या चाहते थे? कहा मौला आपकी ज़ियारत चाहता हूँ, ज़िंदगी भर से तड़प रहा हूँ कि पूरी दुनिया को तो मैं देखूँ लेकिन मेरी आंखें आपके दीदार को तरसें, तड़पें मौला। मैंने ऐसा नहीं कहा। हुज्जत अंसार एक बात बता देते हैं, तुम अपने अमल को हुज्जत अंसार की तरह बना लो। अरे शेख इब्राहिम, अगर तुमने अपने अमल को हुज्जत अंसार की तरह बना लिया होता तो फिर हमें तलाश ना करते, हम खुद ढूंढते हुए चले आते, हम खुद तुम्हें ढूंढते हुए चले आते कि हमारे चाहने वाले का। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने देखा होगा कि कार्निवल में, मॉल में बच्चे खो जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम खो गए, वो कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू खो गए। कभी कोई बच्चा नहीं कहता हम खो गए, वो कहते हैं कि हमारे घर वाले पेरेंट्स खो गए। ऐजाने गिरामी, हम इमाम के खोए हुए बच्चे हैं, हमारे इमाम कहीं नहीं खोया है, हम खो गए। हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपने सिस्टम को चेक करें, ना जाने आज हमारी ज़िंदगी हमें कहाँ ले गई है। छोटी छोटी बात पर हमने अनानियत को अपना सेवा बना लिया है। ज़रा बराबर अगर ज़रा सी किसी से ख़ता हो जाए तो उसकी सारी अच्छाइयों को भूल के उसकी ख़ताओं को लेकर उछालते हैं। किसी की इज्जत इज्जत नहीं रह गई, किसी की ताकत ताकत नहीं रह गई, किसी की नेकी नेकी नहीं रह गई। अगर कोई नेक काम अंजाम देता है तो उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया जाता है कि ये तो दिखावा करते हैं। ये तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमें नेक काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, बुरे काम को मजमे में नहीं अलग से लेके। हकीकी मोहब्बत यही है कि हम उसकी इसलाह करें, ना कि उसका इफ़्शा करें, हम उसको आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उस अमल को हम ख़त्म करने की माशरे से कोशिश करें। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया तो अनकरीब हालात आप देख रहे हैं, इमाम के ज़हूर में बहुत ही जल्दी इमाम का ज़हूर होने वाला है, क्योंकि इस पूरी दुनिया ने हमें लावारिस समझ लिया। इस मसले को भी देखो, जिसने जब चाहा जिसका इम्तिहान ले लिया, जिसने चाहा बंद कर दिया। शेख नम्र के मसाइल को खुदावंद मन्नान उनको और उनके साथ जितने भी असीरान इस्लाम में मेरे महबूद उन सबको रिहाई अता फरमा। मेरे महबूद इन मसाइल को हल फरमा। हम नहीं चाहते कि कोई मसला जंग से ख़त्म हो, जंग से शुरू हो, हम चाहते हैं कि पैगाम मोहब्बत फैलाएं। हम अली के चाहने वाले हैं, हम मोहब्बत के तकाज़ों में। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी माएँ अपने बच्चों को हुसैन की मोहब्बत में दूध नहीं पिलाती, हमारे यहाँ पर ये ख्याल नहीं करती माएँ बच्चों ने खाया होगा नहीं खाया होगा, हुसैन की मोहब्बत में समाम के समाम। बहुत सख्त मरहला है इस मामले में, जब हम एक हो जाते हैं तो हमें ज़िंदगी के हर मामले में एक होना चाहिए। देखिए किस शान से माशाल्लाह जवान बाहर खड़े हैं, कोई पार्किंग में करवा रहा है, कोई जो है आपके लिए आसानियां मुहैया कर रहा है। आपका यहाँ 1 घंटे में बैठने के लिए मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 घंटे की नींदों को ख़राब किया जाता है वॉलेंटियर्स के ज़रिए, तब कहीं जाके हम सुकून से बैठते हैं, अमन व अमान से बैठते हैं। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे उन तमाम खिदमत गुजरान बरदरान और ख्वाहरान की मतलूबात शरिया को कबूल फरमा, कि जो आज़ादारी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि मोमिनीन सुकून से इसको मसले को। और बार बार हुसैन के अलैहिस्सलाम के आज़ादारी के लिए पैसा मांगा जाए बहुत अच्छी बात नहीं है। खुद हम बताएं, क्योंकि अजीज़ाने गिरामी जब हम किसी के यहाँ गिफ्ट लेके जाते हैं तो आपने सुना होगा वो चाहता है कि वो हमें इससे ज़्यादा लौटाए, वो इससे ज़्यादा हमें लौटाए। जब हमारे और आपके दरमियान ये मामला है तो ये तो कोनो मका के मालिक है, अगर इनके नाम पर अगर कुछ दे दिया गया तो यकीन जानना ये बहुत कुछ मिलेगा, हमें बहुत कुछ वापस मिलेगा। और इनके यहाँ पर पैसे की फर्म पैसा नहीं है, पैसे की फर्म में मेरे बच्चे की नेक हयात है, मेरी बच्ची का नेक नसीब है। ऐज़ाने गिरामी, इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट नहीं करते, काउंट नहीं करते। मैंने बहुत दिन पहले एक मसला शुरू किया था, उस मसले को मैं आपसे भी बयान करना चाहता हूँ। अगर हम आशूर के दिन की सैलरी को डोनेशन में लाना शुरू कर दें, हर इंसान काम नहीं करता आशूर के दिन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको पैसा मिलता है तो हम पूरे साल की सैलरी को लगा के एक दिन का जो बनता है उसको हम अपने हुसैन के लिए डोनेट कर दें कि आशूर का दिन हम कमाना तो दूर, जो मिलेगा वो भी हम वापस कर दें। तो अजीज़ाने गिरामी, इन इमाम बारगाह को किसी का मुंह देखना नहीं पड़े, हर इंसान अपनी जगह पे खड़ा होने के बाद इन मसाइल को हल कर सकता है कि हम वन डे सैलरी डोनेशन में आए और अपने इस मसले को, बड़े बड़े मसले हमारे कौम के हल हो सकते हैं। लिहाजा अजीज़ाने गिरामी, हम उस इमाम ज़माना के मानने वाले हैं कि जिस इमाम को दस्तरखान ईमान बिछाना है, पूरी दुनिया की दावत होनी है और उसमें हमें मेज़बान बनना है। हमारे इमाम फ़ख्र से हर इंसान को हुज्जत अंसार की निगाह की तरह देखे कि ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है। लिहाजा ऐसा अजीज़ाने गिरामी, अगर हुसैन की मोहब्बत आपके दिल में है तो आपके लिए रास्ते बहुत आसान हैं, आपके लिए रास्ते बहुत आसान हैं इमाम ज़माना तक पहुँचने, बहुत आसान रास्ते। वो तो दूसरे हैं कि जिनके यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को इंसान चाहता भी है तो वो मसला हल नहीं होता। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन मसाइल को उस वक्त मतरह किया, पेश किया, उसमें था खुदा तरसी और दूसरों से ना डरना, अल्लाह से खौफ ज़दा होना और गैरुल्लाह के खौफ को दिल से निकालना। उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पेश आया था वो मसला ये था कि लोगों के दिलों में खुदा का खौफ तो निकाल दिया गया था और अपने खौफ को भर दिया गया था। लिहाजा हर इंसान हुसैन इब्ने अली के लिए दरवाजे को ये कह के बंद कर रहा था कि हुसैन आप अपनी जान को क्यों दांव पे लगा रहे हैं, आप यजीद से मुकाबला ना करें। अजीज़ाने गिरामी, ये तबीब कायनात हैं, ये पूरी दुनिया का इलाज करना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि देखो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ और इस वक्त जो है सिवाय कुर्बानी के कोई दूसरा रास्ता नहीं। लोग सोच रहे थे कि मरने के बाद कोई मसले को हल कर सकता है। अजीज़ाने गिरामी, अगर इमाम अपनी शहादत के बाद मसले को हल ही नहीं कर गए बल्कि हमारे लिए साबित कर गए कि छुरी की धार से कटती नहीं चराग की लो, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, इमाम ने हमारे लिए इस बात को वाजे कर दिया कि देखो मौत और हयात के फलसफे को अगर इंसान समझ जाए कि हयात किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, हयात जावेदानी लेनी है तो उस अल्लाह की राह में अपने सर को कटाना पड़ेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा बेखौफ बना दिया। अजीज़ाने गिरामी, जहां पर हजरत अबुल फजल अब्बास जैसा गाजी और बहादुर और शुजा सीना सिपर खड़ा था, वहीं पर जनाब कासिम जैसा जवान बच्चा भी जवाब दे रहा था, फर्जंद रसूल मौत तो हमें शहद से ज्यादा मीठी लगती है, मौत तो हमारे लिए शहद से ज़्यादा मीठी। अजीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करैक्टर पेश की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन मसाइल को हल किया है, ये मसाइल किताबी हद तक थे, ये मसाइल मुबाहिसे की हद तक थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि खौफ खुदा कैसे आता है और खौफ इंसान कैसे जाता है। यानी उस भयानक दुनिया को इमाम ने ऐसा बना दिया कि करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, मरने वाले मौत को ही जिंदगी कहने लगे। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मसाले को पेश किया उनमें से किया था। दूसरा, हद व मर्ज इलाही, इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम जोश के बावजूद, तमाम अच्छाइयों के बावजूद हुदूद इलाही का कोई भी तजावुज नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि फर्जंद रसूल आप पे कुर्बान तो होने जरूरी नहीं है, आपकी इजाजत की जरूरत हो, नहीं, वली खुदा का खास एहतमाम। और हर मरने वाला, हर शहीद होने वाला अपने बाद वाले शहीदों को वसीयत करता था कि मेरी वसीयत यह है कि इस इमाम का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि इमाम के ख्याम तक दुश्मन पहुंच जाए और तुम जिंदा रहो। हर मरने वाला जिंदगी जिंदा रहने वाले को यह वसीयत करके मर रहा था। और ऐसा माहौल था अजीज़ाने गिरामी, वलव यह कि तारीख ने लिखा है कि 1,20,000 की फौज थी और मिनिमम 30,000 फौज थी। आप कोई तादाद का कोई मसला नहीं है, हमें यहां कंपटीशन नहीं करना है, वो 1,20,000 हो या वो 30,000 हो, इससे हमारी बहस नहीं है। बहस यह है कि 72 के मुकाबले में बहुत थे, 30,000 की फौज 72 के मुकाबले में भी बहुत थी, और उस 30,000 के मजमे में जो तमाम के तमाम सैराब थे, यहां पर पानी बंद था, वहां पर मदद के रास्ते खुले हुए थे, यहां पर मुहासरा हुआ हुआ था। लेकिन फर्क यह था कि यहां पर नूर हुकूमत कर रहा था, वहां पर जुल्मत हुकूमत कर रही थी, यहां पर जहन्नम के रास्ते बताए जा रहे थे, हुसैन के खेमों में जन्नत दिखाई जा रही थी। ऐजान गिरामी, हुसैन को उस हालत में अगर 72 भी मिले तो बहुत मिले, लेकिन इमाम ने नाज किया, वताबतिल अर्दिल लती फीहा दुफिनतुम, ना सिर्फ कि आप शहीद हो गए, शहादत के दर्जे पे पहुंच गए, बल्कि वो जमीन ताबनाक हो गई जहां आप दफन हो गए। उनका नूर कोने कोने, वो जिया लेकर ही तो हम यहां आए हैं। अगर हमारी जिंदगी से करबला निकाल दी जाए तो हमारी जिंदगी में बचता क्या है? हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचता, क्योंकि हुसैन के साथ और हुसैन के बगैर जिंदगी का मैं आपको खुलासा बता दूं, हुसैन के बगैर इंसान तो तरक्की कर जाएगा लेकिन इंसानियत की तरक्की रुक जाएगी, इंसानियत की तरक्की रुक जाएगी। लोग तरक्की तो करेंगे लेकिन फलाह और बहबूदी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को वीराने में बदलने के लिए करें। लेकिन इमाम ने एक ऐसा रास्ता हमें दे दिया कि देखो, हुदूद इलाही के पाबंद रहना, कोई शहीद नहीं मिलता कि जो ये कह दे कि बग़ैर इजाज़त इमाम के चला गया हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हाँ आकर इजाज़त ज़रूर लेते थे वरना आके खड़े हो जाते, फ़र्ज़ंदे रसूल नमाज पढ़ना चाहते हैं, आका हम चाहते हैं कि आप नमाज अदा करें, कहा आका हम इजाज़त चाहते हैं कि आगे खड़े हो जाए, हम आपके आगे खड़े हो जाए। शहीद सीनों पे तीर रोकते रहे, फर्जंदे रसूल की नमाज हो जाए। इधर इमाम की नमाज खत्म हुई, इमाम के साहबी तीर खा करके, मौला आप राजी तो हैं? कहा सईद, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। सईद, तुमने नमाज को पढ़ा नहीं है बल्कि नमाज को जिंदा कर गए, तुमने नमाज को कायम करने के लिए अल्लाह ने कहा था, तुमने नमाज को कायम कर दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर अल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ाने गिरामी, वाक़े करबला कोई अचानक होने वाला वाक़ा नहीं था, खुदा का रसूल इस मसले को बयान कर चुका था, और बारहा रसूल इस्लाम की बज़्म में हुसैन की मजलिस अज़ा हुई है, सब ने गिरिया किया है। ज़हरा मर्ज़िया ने जब यह मसला सुना तो बाबा क्या आप होंगे मेरे हुसैन को रोने के लिए? कहा फातिमा मैं नहीं हूँ। क्या अली मुर्तज़ा होंगे? कहा फातिमा अली भी ना होंगे। कहा बाबा क्या मैं होंगी? कहा फातिमा तुम भी नहीं होंगी। कहा हसन होंगे? कहा हसन भी नहीं। तो बाबा मेरे मजलूम पे कौन रोएगा? मेरे मजलूम की इस मजलूमियत पे कौन आंसू बहाएगा? कहा फातिमा, खुदा एक ऐसी कौम, एक ऐसे मोमिनीन को तैयार करेगा, एक ऐसी मेरी उम्मत में से गिरोह होगा जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों को रोएंगे। फातिमा ने कहा बाबा ये उम्मत मुझे चाहिए, मैं दुआ करती हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अली के चाहने वाले दो हाल से खाली नहीं है, अगर सैयद है तो औलाद सैयदा है और गैर सैयद है तो दुआ सैयदा है। हम उनके बगैर हमारी ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, बीबी ने हमारे लिए दुआ की है। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम अली मुर्तज़ा ने हुसैन के लिए गिरिया किया, इमाम हसन मुश्तबा का ज़माना आया, अय हुसैन तेरी गुरबत पे मैं कुर्बान, अय हुसैन तेरी गुरबत पे मैं कुर्बान। एक मरतबा अपनी जौजा से कहा, अय जौजा, अय उम्मे फरवा, मैंने एक ख़त लिख दिया है, ये तावीज़ है, ये नक्श है, मैं कासिम के हाथ में बांध देता हूँ, और जब मेरा कासिम बड़ी मुसीबतों में गिर जाए तो उस वक्त इस तावीज को खोलना काम आएगा। अजीजाने गिरामी, तमाम वक्त गुजरता चला गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन बच्चों पे कोई मुसीबत का वक्त आने नहीं दिया। जैसा अकबर की परवरिश की, इसी तरह कासिम की परवरिश की। वो वक्त आया कि करबला मुअल्ला में कासिम अपने चचा के पास आकर खड़े हो गए। चचा का, कासिम तुम मौत को कैसा देखते हो? कहा, अहला मिनल असल, चचा मैं मौत को तो बहुत मीठा सोचता हूँ। जनाब कासिम ने बहुत सी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की और वो तमाम की तमाम बातें कि क्या चचा क्या होगा कि हम कौन बचेगा। तो इमाम ने फरमाया कि बस कासिम अलगरज ये है कि जब जंग का मैदान, जब बाजार सजेगा शहादत का, तो जनाब अली असगर भी शहीद हो जाएंगे। कासिम ने कहा, क्या उदू खेमे में भी आ जाएंगे? क्योंकि बच्चा था, ये जानता था कि क्या उदू इस खेमे में आ जाएंगे, चूंकि बच्चे की जंग का तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन इमाम ने फरमाया, नहीं, मैं सवाल आपके लिए असगर को लेकर जाऊँगा और ये बच्चा शहीद कर दिया जाएगा। जजाकुम रब्बुकुम खैरल जजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कासिम बार बार आते हैं। इमाम हसन मुश्तबा के लाल को प्यार करके इमाम लौटा देते हैं। मैदान शहादत सजा हुआ है, कासिम अपनी वालदा के खेमे में बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। उम्मे फरवाने कहा, मेरे लाल क्या बात है? कहा कि मादरे गिरामी, चचा मुझे इजाजत नहीं देते, मैं जाता हूं, मुझे प्यार करते हैं वापस लौटा देते हैं कि जाओ उम्मे फरवा की दिल की आस बनो, और ये कहकर मुझे भेज देते हैं। जब कासिम को रोते हुए देखा तो जनाब उम्मे फरवा ने कहा कि कासिम, मेरे तुम्हारे मसले का हल नजर आता है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे बाबा ने एक तावीज तुम्हारे हाथ में बांधा था और कहा था कि जब वक्त मुसीबत हो तो इस तावीज को खोल लेना। अजीजों, आज का दस्तूर यह है कि माएं इसलिए तावीज बंधवाती हैं कि बच्चा महफूज रहे, बाप इसलिए उसके लिए दुआ देते हैं कि बच्चा महफूज रहे। अजीजाने गिरामी, अजब घराना है, यहां पर कुर्बानी के लिए तावीज लिखे जाते हैं। एक मरतबा हसन मुश्तबा के इस तावीज को खोला गया, खोला तो क्या देखा, एक भाई की तहरीर दूसरे भाई के नाम थी। जनाब कासिम खुश हो गए, इस तहरीर को लेकर इमाम की खिदमत में पहुंचे कि ऐ चचा जानी, मेरे बाबा का खत, मेरे तावीज मेरे बाजू पे बना था, मेरे मादर गिरामी ने ये दिया है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब दरार गुर्बत में अपने भाई हसन मुश्तबा की तहरीर को पढ़ा, लिखा था, ऐ मेरे बिरादर गरीब, ऐ मेरे गरीब भाई, ऐ हुसैन तेरी गुर्बत पे मैं कुर्बान, ऐ हुसैन अगर करबला में मैं होता तो तेरी इस गुर्बत में जरूर साथ देता, लेकिन मेरे इस हदीये को कबूल कर लेना और मेरे बेटे कासिम को जंग की इजाजत दे देना। अजीजाने गिरामी, जब हुसैन ने भाई की तहरीर को पढ़ा, अरे नाना का मदीना याद आ गया। ए भैया, आपका भाई हुसैन इतना गरीब हो गया, अब मुझे माँ के नाम से लोग पुकार रहे हैं। जजाकुम रब्बुकुम खैरल जजा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। जनाब कासिम को इमाम ने इजाज़त दी। तारीख लिखती है, दोनों चचा भतीजे इतना रोए कि गश आ गया। उसके बाद गश से इफाका हुआ, कासिम को एक मरतबा दूल्हा बनाया और जंग के लिए तैयार किया। कासिम वो बच्चा है कि जिसके अंदाजे की ना ज़रा पाई जाती है, ना जिसके अंदाजे की कोई तलवार पाई जाती है। 13-14 साल का सिन है। कासिम इबन हसन को घोड़े पर बिठाया। कासिम इबन हसन जो है उस वक्त का सबसे खूबसूरत बच्चा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अरे जिरा तो ना थी, जो कुर्ता कासिम के तन पर था उसके गिरेबान को भी चाक कर दिया। अरब का दस्तूर था कि जब कोई यतीम होता था तो उसके गिरेबान को चाक कर देते थे कि शायद मलून, शायद लोग तुम पर रहम खाए, यतीम समझकर कासिम इब्न हसन चले। अजीजान गिरामी, यहां पर रहम तो क्या खाना, बड़े पहलवान ताजा दम अरजक शामी को हुक्म दिया गया, अरे अरजक शामी, हुसैन ने हमारी तौहीन की है, एक छोटे बच्चे को हमारे मुकाबले में भेजा है, लिहाजा हम बताना चाहते हैं कि हम इसका मुकाबला अर्ज़क शामी से कराएंगे। अर्ज़क शामी ने कहा, अरे मेरे बच्चे ही बहुत हैं इनके मुकाबले के लिए। उसने अपने एक के बाद एक चार बेटों को भेजा। जनाब कासिम ने चारों बेटों को तहतेक कर दिया। अब ये गुस्से से लाल होता हुआ जनाब कासिम इब्ने हसन पर हमला करने आया। मेरा मौला इस जंग को देख रहा था, बीबियों बीबियों हसन के लाल के लिए दुआ करो, अरे मेरा लाल कासिम एक पहलवान के मुकाबले
मुकाबले में लाया गया है। फर्क यह है वो पहलवान भी है, उसने खाना भी खाया है, उसने पानी भी पिया है, वो ताजा दम भी है। इधर कासिम है, तीन दिन की भूख और प्यास और सुबह से इन मसाइब को देखने वाला कासिम। अजीजान गिरामी, इमाम हसन मुश्तबा ने दुआ के लिए कहा, कासिम इब्ने हसन ने अर्ज़ के शामी को भी फासिले जहन्नम किया। अजीजान गिरामी, इस दाद और सतद के लिए गाजी अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान क़िताल की तरफ दौड़े, क्योंकि तमाम फौजें एक साथ कासिम पर हमला करना चाहती थी। अब जो इन्होंने देखा कि अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं, तमाम की तमाम फौजों ने दौड़ना शुरू किया। इसी असना में कासिम इब्ने हसन घोड़े से जमीन पर आए, घोड़ों की टापों के नीचे कासिम की आवाज ना पहुंच सकी। हुसैन इब्ने अली आखिरी मरहले तक इस बात पे गिरिया करते रहे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लाल कासिम, अरे तुम चचा को पुकारते रहे, मैं उस वक्त ना आ सका जब तक इमाम पहुंचे। रूह कफ़ज़े उनसुरी से परवाज कर गई, कासिम का लाशा पामाल हुआ। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, उठाना चाह, अब वो बच्चा जो आगोश में आता था, अब आपके पैर मुबारक जमीन पर खत देते थे। कासिम को खेमे में लाया गया, बीबियों ने कोराम बरपा कर दिया। उम्मे फरवा पुकारी, ऐ मेरे लाल, तूने रोजे महशर मुझे खातून जन्नत के सामने सुरखरू कर दिया, अब मैं हसन शहीद से कह सकती हूँ, ऐ मेरे वालियो वारी, मैंने आपकी अमानत को शहादत के दर्जे तक पहुंचने की इजाजत दी। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارِ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، بارِ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اسیران اسلام کو رہائی عطا فرما، بالخصوص شیخ نمر کی تمام مشکلوں کو آسان فرما، ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، اس کے علاوہ جو بھی مومنین مومنات قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، تجھے واسطہ سید سجاد کا، تجھے واسطہ جناب قاسم ابن حسن کا، میرے معبود ان کو آزادی فرما، میرے معبود ہمیں اپنے نفس کی قید سے آزاد فرما، میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے سب بننے کی توفیق عنایت فرما، میرے معبود کسی نا اہل کا محتاج نہ بنا، میرے معبود ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان مقامات دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، جو جو مومنین مومنات دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جس انداز میں، جس لباس میں، جس مقام پر، جس خطے زمین پر، میرے معبود ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں پیروکار شہیدان کربلا بنا، میرے معبود ہمیں کربلا کی عبرتوں کو ہماری زندگی سے اوجھل نہ ہونے دے، میرے معبود ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔